अगर आजादी के बाद के हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं, समझना माने सच में समझना, कोई एकेडमिक चर्चा नहीं, हिंदुस्तान जैसा है वैसा, यानी अपनी तमाम विविधता, विसंगतियों, विडंबनाओं में लिपटा हिंदुस्तान, जिंदा धड़कता हिंदुस्तान, इस देश की नब्ज टटोलनी हो तो सैकड़ों हजारों किताबों की जगह आप एक लेखक की चंद किताबें भी उठा सकते हैं। वो लेखक जिसने समय को सुइयों वाली घड़ी की तरह नहीं परखा, रेत घड़ी की तरह देखा। दुनिया उन्हें हरिशंकर परसाई के नाम से जानती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म से करीब साल भर पहले 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जन्मे परसाई, शायद इसीलिए वो हमेशा संघ की विचारधारा से दूर और आगे रहे। उन्होंने लिखने की जो शैली अपनाई थी तो वो व्यंग्य, जिसे कई बार हास्य व्यंग्य भी लिख दिया जाता है, लेकिन परसाई की कलम का पैनापन इतना तेज था कि सब उधेड़ कर रख देता था। जिसके लिए जो बात कही जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पढ़े और प्रतिक्रिया न दे। या तो वो जार जार रोता होगा, गुस्सा होता होगा, परसाई को गालियां देता होगा, या फिर कभी ऐसा भी होता होगा कि उसे ये पढ़ के हंसी आती होगी। बाद में किसी खाली दिन अचानक दिमाग की दीवारों से परसाई की लिखी कोई लाइन टकरा जाती होगी और दरवाजे खुल जाते होंगे इस बात के कि वो हास्य तो था ही नहीं, बल्कि सिर्फ दिखता हास्य था। परसाई अपने लेखन में वाकई अद्भुत थे। उन्होंने इस समाज की, सियासत की, आस्था की, धर्म की इतनी परतें खोली कि कभी कभी उन्हें भगवान मान लेने का दिल करने लगता है। हालांकि भगवान कहलाया जाना कम से कम परसाई को तो कभी गंवारा ना होता। यकीन नहीं आता तो जरा ये सुनिए जो उन्होंने व्यंग्य लिटरेचर ने मारा तुम्हें में लिखा है। दिवाली पर मैं लक्ष्मी पूजन नहीं करता, न मेरे घर की दीवारों पर भद्दे अक्षरों में श्री लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहे लिखा है। पूजा अपनी प्रकृति से मेल ही नहीं खाती। किसी की पूजा करेंगे तो या तो उसका नुकसान होगा या अपना। लक्ष्मी जी अब इस मोहल्ले में आती भी हैं तो दूर से मेरी नेम प्लेट पढ़कर सड़क के उस बाजू हो जाती हैं। लेखक ज्ञान रंजन कहते हैं कि परसाई को मैटिनी आइडल कहा जा सकता है। प्यार और भक्ति के समंदर के बीच परसाई ने अपनी धारदार खड़ी बोली में इस भारतीय समाज की अनगिनत पेंटिंग बना डाली। और ये कितना सच मालूम होता है। परसाई ने इमरजेंसी देखी तो उस पर लिखा, राजनीति के गिरते स्तर से परेशान हुए तो उस पर कलम चलाई, साधु संतों के पाखंड और झूठे अध्यात्म को उभरते देख उनका पर्दाफाश किया। आप चाहें तो परसाई को डॉक्टर कह लीजिए, जिसका हाथ हमेशा समाज की नब्ज पर रहा। चाहे तो सफाई कर्मचारी भी कह लीजिए, जिसने इस देश समाज के कचरे और गंदगी को साफ करने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन किसी भी कीमत पर परसाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका रचना संसार इतना बड़ा है, इतना समृद्ध है कि उसमें बार बार लौटना होगा। कुछ मोती हासिल तुरंत हो जाते हैं, कुछ मोतियों के लिए डुबकी गहरे लगानी होती है। परसाई के कई व्यंग भी इसी तरह काम करते हैं। शुरू में कुछ हंसी मजाक लग सकता है, लेकिन जब समझ जाएंगे तो दिल रोने रोने जैसा हो जाएगा। कैसे, समझते हैं सदाचार के तावीज के इस अंश से। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। कुछ दिन बाद राजा के आदेश पर विशेषज्ञ ने जांच की और उन्हें ढेर सारा भ्रष्टाचार मिला। राजा ने कहा, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि भ्रष्टाचार सूक्ष्म है, अगोचर है और हर जगह है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। इसके बाद राजा ने एक साधु के सुझाव पर सदाचार के तावीज बनवाने का कारखाना खुलवा दिया ताकि उन्हें पहनकर सब भ्रष्टाचार से तौबा कर लें। हालांकि इसका कोई फायदा हुआ नहीं। प्रेमचंद देश के शायद सबसे बड़े कहानीकार हैं, जिन्होंने अपने वक्त की कहानियों को सामने रखा। उन्हीं प्रेमचंद की एक तस्वीर है, बड़ी पुरानी, अपनी पत्नी के साथ जिसमें उनका फटा जूता दिख रहा है। परसाई की नजर से ये जूता चूक नहीं पाता। वो प्रेमचंद के फटे जूते में लिखते हैं, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, पर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जमती गई है। तुम क्या पांव की उंगलियों से उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? हरिशंकर परसाई की लेखनी में जितना तेज था, वो आसानी से बड़े सरकारी पदों पर तमाम सुख सुविधाओं के बीच जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं चुना जहां जो गलत लगा उसकी बखिया उधेड़ने में परसाई ने देर नहीं लगाई। परसाई की कलम हमारे वक्त का आईना है और यकीन मानिए उसमें हम बहुत बदसूरत नजर आते हैं। 1982 में परसाई को उनके व्यंग्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। परसाई की लिखी किताबों में वैष्णव की फिसलन, सदाचार का तावीज, रानी नागफनी की कहानी, भोलाराम का जीव और ठिठुरता हुआ गणतंत्र अहम हैं। पूरी जिंदगी अपनी लेखनी से समाज और देश को कुछ कहने और बदलने की कोशिश करता रहा ये रचनाकार 10 अगस्त 1995 को हमारे बीच से चला गया। चलते चलते उनके व्यंग्य मैं नर्क से बोल रहा हूं से वो शुरुआती अंश जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसीलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते वक्त तक जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसीलिए मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं नर्क से बोल रहा हूं। ये पॉडकास्ट आप सुन रहे थे क्विंट हिंदी पर। ऐसे ही तमाम दिलचस्प पॉडकास्ट और खबरों के लिए बने रहिए क्विंट हिंदी के साथ।